पिछले पाठ के अंत में तीसरी कारिका आपने पढ़ी थी, उसमें सद्भाव भेदस्य योनयः ये पंक्ति आई थी। तो योनयः का अर्थ है कारणानि, माने भाव भेदस्य षट कारणानि भवन्ति। भाव के जो भेद होते हैं उसके छह कारण होते हैं, नहीं नहीं छह प्रकार के जो भाव के भेद हैं उन भेदों का कारण जो है कौन होता है, तो काल शक्ति जो है वह कारण होती है। ये प्रसंग आया था। इसमें भाव भेद जो है ना, इसमें भाव शब्द का अर्थ करना है पदार्थ है, तो भाव भेद माने पदार्थ भेद। इस भाव का अर्थ हम अवस्था भी कर सकते हैं, अवस्था भेद। संसार में जितने भी सजीव पदार्थ हैं उनमें छह प्रकार के ही विकार होते हैं, इसके अलावे और कोई विकार नहीं होता। विकार का अर्थ परिवर्तन, छह प्रकार के चेंजेज आते हैं। सबसे पहले तो जन्म होता है, इसको कहते हैं जायते। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है कि के सद्भाव का सद्भाव भेदस्य योनयः, ये प्रश्न होता है कि छह प्रकार के भाव भेद के कौन योनि हैं, माने कौन कारण हैं। तो इसका कारण जो है वह काल शक्ति है, और ये छह प्रकार के भाव भेद कौन हैं ये अगर पूछा जाता है, तो आपको हमने पिछले पाठ में बताया था, आप लोगों ने अपने नोट में भी लिखा है कि जन्म, स्थिति, मरण, वृद्धि, ह्रास और विनाश अथवा नाश, ये आपने लिखा। इसको हम अगर तिङन्त पद में अगर लिखते हैं छह प्रकार का, तो क्या लिखेंगे, तो आप लोग लिखिए जन्म के लिए हो जाएगा जायते, स्थिति के लिए हो जाएगा अस्ति। तो पहला हुआ जायते, दूसरा हुआ अस्ति, तीसरा हुआ म्रियते, मरण के लिए हो गया म्रियते, चौथा जो वृद्धि है उसके लिए हो जाएगा वर्धते, क्या होगा वर्धते, और ह्रास के लिए होगा ह्रसते, ह्रसते और मिलकर के संयुक्त अक्षर कर लीजिएगा ह्रसते, और फिर नाश के लिए नश्यति। तो जायते, अस्ति, म्रियते, वर्धते, ह्रसते, नश्यति, लिख लिया होगा आपने। इसको जो है ना, ये जो म्रियते मैंने जो लिखाया है ना, ये म्रियते को काट दीजिए, और पहला तो ठीक है जायते, दूसरा हो गया क्या लिखा है अस्ति, ये भी ठीक है, तीसरा लिखा है वर्धते, ये भी ठीक है, चौथा जो लिखा ना आपने म्रियते, म्रियते को काट करके लिख लीजिए परिणमते, क्या लिखेंगे परिणमते, ये तीसरा चौथा जो भी हो, तो म्रियते को काट करके लिखना है परिणमते, लिख लिया परिणमते, फिर ह्रसते और नश्यति। तो अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि के सद्भाव भेदाः, तो यही लिख दीजिएगा कि सद्भाव भेदाः जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, ह्रसते और नश्यति। तो मैं बता रहा था कि कोई भी वस्तु सबसे पहले क्या होती है, उत्पन्न लेती है, फिर वह जो उत्पन्न वस्तु होती है उसकी स्थिति रहती है, माने वह विद्यमान रहता है, फिर वर्धते हैं, फिर वह जो है ना बड़ा होना शुरू होता है, परिणामते माने उसमें परिणाम होता है, परिणाम मतलब परिवर्तन होता है। अब जैसे जिसको दाढ़ी मूछ पहले नहीं रहता है, बाद में दाढ़ी मूछ आने लगती है, ये क्या है, ये परिणामते है, और फिर ह्रसते, फिर ह्रास होता है 40 एज के बाद व्यक्ति का की हड्डी मांसपेशियाँ बाल दांत ये सब जो है ना कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, ये हो गया ह्रसते, और फिर अंत में जो मृत्यु होती है तो वह हो गया नश्यति। तो इस तरह से यही क्रम जो है सारे पशु में, पक्षी में, छोटे छोटे जीव जंतु में सब में जो है ना यही क्रम देखा जाता है, यही जो है छह प्रकार का भाव भेद है अर्थात पदार्थ का भेद है। और यह पदार्थ का भेद होता क्यों है, तो काल शक्ति के कारण होता है, काल के कारण ही व्यक्ति जन्म लेता है, काल के कारण ही जो स्थिति रहती है। और तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं पहले, ये सारी बातें जो है काल के कारण ही होता है, इसलिए सबका योनि जो है वह काल है, काल ही सबका कारण है। इस तरह से हमने तीसरी कारिका का उपसंहार अभी मैंने किया, अब चौथी कारिका पढ़ेंगे। अब इसमें एक प्रश्न ये है कि वह जो काल शक्ति है, जो छह प्रकार के भाव भेद की योनि है, वह काल शक्ति ब्रह्म से भिन्न है या ब्रह्म स्वरूप है। इसको हम ब्रह्म से अभिन्न भी कह सकते हैं, ब्रह्म स्वरूप माने ब्रह्म से अभिन्न। तो काल शक्ति ब्रह्म से भिन्न है या ब्रह्म से अभिन्न है, ये प्रश्न है। इसी प्रश्न का उत्तर बताने के लिए चौथी कारिका बताई जा रही है कि एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयम अनेकधा भोक्तृभोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थिति। ये ब्रह्म जो है वह एक होता है, ये आप जानते ही हैं, वह ब्रह्म हो या फिर शब्द ब्रह्म हो, दोनों में एक ही, दोनों एक ही चीज़ है। तो शब्द ब्रह्म जो है वह एक ही होता है, और काल शक्ति जो होती है वह नाना होती है, अनेक प्रकार की होती है, ये आपने पढ़ा है। तो वह जो काल शक्ति होती है ना, उस काल शक्ति के कारण ही जो है वह एक जो शब्द ब्रह्म है वह अनेक रूपों में उसकी स्थिति होती है। तो एक ही शब्द ब्रह्म का जो अनेक रूप में स्थिति होती है, अनेक रूप में सत्ता रहती है, हाँ, उसका भी कारण कौन है, काल शक्ति है। तो ब्रह्म शब्द ब्रह्म तो एक है, किंतु काल शक्ति नाना होती है, और काल शक्ति के नाना होने के कारण ही जो है ये जायते अस्ति विपरिणमते ह्रस्ते नश्यति वर्धते, ये सब सारे जो है विकार होते हैं। तो ये जो प्रश्न किया गया था कि काल शक्ति जो है वह ब्रह्म से भिन्न है कि ब्रह्म से अभिन्न है, तो वह काल शक्ति जो है ब्रह्म से भिन्न ही है, लेकिन वह अभिन्न के रूप में जो है ना वो जानी जाती है, अभिन्न के रूप में प्रतीत होती है। चलो तो अब इस कारिका का अर्थ देखते हैं। एकस्य सर्वबीजस्य, सर्वबीजस्य का मतलब है सर्वेषां बीजस्य कारणस्य, बीज का अर्थ होता है कारण, तो सभी का कारण जो है एकस्य, वह एक ही है। तो सभी का कारण एक कौन है, तो वही शब्द ब्रह्म है। तो सर्वेषां बीजस्य एकस्य शब्द ब्रह्मणः, सभी का जो बीज एक है शब्द ब्रह्म, उस शब्द ब्रह्म का, यस्य च इयम् अनेकधा, उसी शब्द ब्रह्म का जो है अनेक प्रकार का, अनेक रूप से जो है स्थिति बनती है। लास्ट में आया है ना कारिका में, भुक्ति भोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थिति ही। तो इस स्थिति को पकड़ करके यहाँ ले आइए, अनेकधा स्थिति ही। तो फिर से एक बार बोलता हूँ कि सर्वेषां बीजस्य अर्थात कारणस्य एकस्य शब्द ब्रह्मणः यस्य इयम् अनेकधा स्थिति भवति, एक जो सभी का कारण शब्द ब्रह्म है, उसी शब्द ब्रह्म की अनेकों स्थितियां होती हैं काल शक्ति के कारण। अब मन में प्रश्न आएगा कि वो कौन सी अनेकों स्थितियां हैं, तो उसके लिए दूसरी पंक्ति में बताया गया भोक्तृभोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थिति। ये जो पंक्ति है इसमें परीक्षा में भी पूछते हैं कि भोक्तृ का, भोक्तृ माने भोक्ता, तो भोक्ता का क्या अर्थ है, भोक्तव्य का क्या अर्थ है, और भोग का क्या अर्थ है। तो शब्द ब्रह्म ही जो है ना भोक्ता के रूप में स्थित रहता है, भोक्तव्य के रूप में स्थित रहता है, और भोग के रूप में स्थित रहता है। ये तो ये कारिका का अर्थ हुआ। अब ये भोक्ता कौन है, तो भोक्ता होता है जीव, है दो तरह की आत्मा होती है ना, जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा जो है वही भोक्ता होता है, भोक्ता मतलब भोग करने वाला। तो सुख हो, अथवा दुख हो, दोनों का भोग कौन करता है? भोक्ता करता है। और वह भोक्ता कौन है? तो वह जीव जीव है, जीवात्मा है, वही यहाँ पर भोक्ता है। भोक्तव्य क्या है? तो भोग का जो विषय होता है, मैंने बताया हुआ है आपको विषय के बारे में कि जिसका भोग किया जाए उसको हम भोग का विषय कहते हैं। तो किसका भोग किया जाता है? तो अन्न पान आदि जो है उसी का जो है ना भोग किया जाता है। तो भोग का विषय हो गया अन्न पान आदि। तो यहाँ भोक्तव्य रूपेण का अर्थ करेंगे कि अन्न पान आदि भोग विषय रूपेण। भोक्तव्य रूपेण का अर्थ क्या करेंगे? अन्न पान आदि भोग विषय रूपेण। और फिर तीसरा जो है भोग रूपेण, इस यहाँ जो भोग शब्द है इसका अर्थ है भोजन पान शयन आदि क्रिया। तो भोजन पान शयन आदि क्रिया के रूप में, माने वही जो शब्द ब्रह्म है वह भोक्ता के रूप में अर्थात जीव के रूप में है, वही जो शब्द ब्रह्म है वह भोक्तव्य के रूप में अर्थात अन्न पान आदि भोग विषय के रूप में, और वही जो शब्द ब्रह्म है वह भोग रूप में अर्थात भोजन पान शयन आदि क्रिया के रूप में स्थित रहता है। माने लोक व्यवहार को चलाने के लिए प्रवृत्त रहता है, लोक व्यवहार चलाने के लिए विद्यमान रहता है। तो वही जो शब्द ब्रह्म है, एक शब्द ब्रह्म, वही एक शब्द ब्रह्म भोक्ता के रूप में भी रहता है संसार में, भोक्तव्य के रूप में भी रहता है और भोग के रूप में भी रहता है। यहाँ ये जान लीजिए कि वेदांत सार आपने पढ़ा होगा, वेदांत में ब्रह्म और अविद्या की बड़ी चर्चा है। तो वेदांत में जो अविद्या का काम है, और सांख्य दर्शन आपने पढ़ा होगा उसमें प्रकृति के बारे में सुना होगा कि रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों की जो सम अवस्था है, साम्यावस्था है, उसी का नाम है प्रकृति। तो वेदांत में जिसको अविद्या कहा गया, सांख्य दर्शन में जिसको प्रकृति शब्द से कहा गया, वही जो है यहाँ वाक्यपदीय में काल शक्ति शब्द से बोला गया है। तो जैसे सारे व्यवहारों का प्रवर्तक जो है वेदांत में अविद्या को माना जाता है, लेकिन ब्रह्म जो है वेदांत में वह तो निर्विकार होता है, चिदानंद स्वरूप होता है, सदा एक ही रूप रहता है, कभी वह व्यभिचरित नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि उसका अभाव हो। इसी तरह से ये काल शक्ति जो है सारे व्यवहार की प्रवर्तिका है, काल शक्ति के कारण ही सारा व्यवहार चलता है। और शब्द ब्रह्म जो है वह तो स्वयं में निर्विकार है, एक है और चिदानंद स्वरूप है। इस तरह से हमने चौथी कारिका को भी पढ़ा। अब पांचवी कारिका में क्या है? प्राप्ति उपायोनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः एकोप्यनेक वर्तमेव समामनातः पृथक पृथक। अब इससे पहले, ये पांचवी कारिका है, इससे पहले जो चार कारिकाएं आपने पढ़ी हैं उसमें शब्द ब्रह्म के बारे में बताया गया, शब्द ब्रह्म का लक्षण बताया गया, उनकी शक्ति के बारे में बताया गया, और शब्द ब्रह्म किस किस रूप में स्थित रहता है वो बताया गया। अब यहाँ पर जो है प्रश्न ये मन में आता है कि चलिए ठीक है, शब्द ब्रह्म समझ में आ गया कि शब्द ब्रह्म क्या होता है, वह अनादि निधन होता है, वह शब्द तत्व होता है, वह अक्षर होता है, उसी शब्द ब्रह्म से सारे जगत की प्रक्रिया विवर्तित होती है अर्थ भाव में, और उसकी जो है ना ये काल, उसकी जो शक्तियां हैं शब्द शक्तियां, वो काल शक्ति के द्वारा जो है काल शक्ति पर आश्रित रहती हैं, और काल शक्ति जो है उसके कारण सारे संसार के विकार उत्पन्न होते हैं, और शब्द ब्रह्म एक होकर के भी अनेक रूप में भाषित होता है। ये तमाम बातें पहले हो चुकी हैं। तो कहा कि ये जो शब्द ब्रह्म है और उस शब्द ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? तो वेद कहता है कि रिते ज्ञानान्न मुक्ति ही, कि ज्ञान से ही जो है मुक्ति मिलती है, ज्ञान के सिवाय और कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिससे कि मुक्ति मिले। मुक्ति कब होती है? जब ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो कहा कि शब्द ब्रह्म का जब ज्ञान होगा तो मुक्ति मिल जाएगी। फिर व्याकरण को क्यों पढ़ा जाए, क्योंकि व्याकरण के प्रयोजन में भी जो है ना मुक्ति को परम प्रयोजन माना गया है। तो कहा कि जब शब्द ब्रह्म का ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती है तो फिर जो है व्याकरण के ज्ञान की क्या आवश्यकता है। इसी संदर्भ को लेकर के पांचवी कारिका जो है ना यहाँ पर बताई गई है। इसको मैं बहुत ही शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि वेद के बारे में इसमें बताया गया है कि वह वेद जो है प्राप्ति उपाय, प्राप्ति में ब्रह्म को अपनी ओर से जोड़ लीजिए कि ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय जो है, साधन जो है, मार्ग जो है वह वेद है। ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय वेद है। और क्या है वेद के बारे में तो बताया, अनुकारश्च, वह जो वेद है वह अनुकार है, माने अनुकरण है, नकल है। किसका नकल है तो ब्रह्म का ही नकल है, ब्रह्म का अनुकरण है। तो वेद जो है वह ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय है और वेद जो है वह ब्रह्म का अनुकरण है, माने उसकी फोटोकॉपी है। तस्य वेदो महर्षि भी, तस्य माने ब्रह्मण, वेद प्राप्ति उपाय अस्ति, अनुकारश्च अस्ति। फिर महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा क्या किया गया, वह जो एक वेद है उस एक वेद को अनेकों शाखाओं में पृथक पृथक जो है समामनात किया गया। समामनात माने कथित, पृथक पृथक माने भिन्न भिन्न रूप से। एक अपि अनेक वर्तमा इव, माने वह जो एक वेद है उसको अनेक वर्तमा, माने जिसके अनेक वर्तम कहते हैं मार्ग को, यहाँ पर वर्तम का अर्थ शाखा कर लीजिए कि एक ही वेद को अनेकों शाखाओं में विभक्त करके महर्षियों ने हमें बताया। तो वेद जो है वह ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय है, वेद जो है वह ब्रह्म का ही अनुकरण है, माने उसकी फोटोकॉपी है, या फोटोकॉपी नहीं के सीधे उसकी कॉपी है। महर्षियों ने उस एक वेद को जो है अनेक वर्तमान युवा माने अनेक शाखाओं में बांट करके पृथक पृथक रूप से, अलग अलग रूप से हमें बताए हैं, महर्षियों ने बताया है। और उस वेद को जब हम जानेंगे तभी तो ब्रह्म को जान पाएंगे, और वेद को जानने के लिए ब्राह्मण की व्याकरण का ज्ञान जरूरी है। इस तरह से ये जो प्रश्न किया था कि शब्द ब्रह्म के ज्ञान से जो है ना काम चल जाएगा, व्याकरण के ज्ञान की क्या जरूरत है, उसका उत्तर हो गया कि ब्रह्म ज्ञान होगा वेद के ज्ञान से और वेद का ज्ञान होगा व्याकरण के ज्ञान से, इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। आज का पाठ यहीं रखते हैं।